हरिशरणम भक्तवांछा कल्प करु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भक्त चरित्रों के परम रसिक श्रोता भगवान श्री हरि की अहेत की अनुकंपा से हम आप सबको देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग भी प्राप्त हो रहा है। महाभाव रस वारिधि निमग्न प्रीति रसावतार श्री राधा बाबा के पावन जन्म शताब्दी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गीता वाचिका के पवित्र परिसर में श्री गिरिराज महाराज की भावमयी तरहटी में हम आप सब श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से कली पावन अवतार श्रीमद् जगद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर। अभी हमने छप्पे छंद का पाठ किया, गोस्वामी जी के आविर्भाव का हेतु वाल्मीकि तुलसीदासः भविष्यति कलौ युगे शिवेनात्र कृतो ग्रंथः पार्वतीं प्रतिबोधितुं रामभक्ति प्रवाहार्थं भाषा काव्यं करिष्यति रामायणं मानसाख्यं तत्ते शंकां निवारयेत्। ये बृहद ब्रह्म रामायण का प्रमाण है। बृहद ब्रह्म रामायण में ये बात कही गई है। महर्षि वाल्मीकि ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होंगे। श्री रास बिहारी भगवान
जय, जय।
शिवेनात्र कृतो ग्रंथो पार्वतीं प्रतिबोधितुं, भगवती जगत जननी श्री पार्वती जी को प्रबोध देने के लिए भगवान शिव ने जो श्री रामचरित्र सुनाया था उसी रामचरित्र को प्रवाह राम भक्ति प्रवाहार्थम भाषा काव्यम करिष्यति। श्री राम भक्ति की सरिता को, मंदाकिनी को, गंगा को प्रवाहित करने के लिए उसी भगवान शिव पार्वती के संवाद को महर्षि वाल्मीकि कलिकाल में तुलसीदास जी के रूप से प्रकट होकर के भाषा ग्रंथ के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। यह भी बृहद ब्रह्म रामायण में लिखा है और नाम का उल्लेख भी है, रामायणम मानसाख्यम तत्ते शंकाम निवारयेत्। मानस नाम वाली रामायण लिखेंगे, रामचरित मानस, मानस उसकी आख्या होगी, मानस के रूप में उसकी प्रसिद्धि होगी। और ये जो बृहद ब्रह्म रामायण का प्रमाण है इसी से मिलता जुलता भाव स्वयं तुलसीदास जी महाराज का भी है। रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवातन भाखा भाषा बद्ध करव में से उसी को मैं भाषा बद्ध। कल हमने अनेक जो भारतवर्ष के पूर्व कविगण हुए हैं उनके भी भाव गोस्वामी जी के चरणों में जो उन्होंने निवेदित किए हैं उनका स्मरण किया था। कल की पूरी कथा का स्मरण कराने से फिर आगे का प्रसंग कम रह जाएगा, इसलिए इतना ही समझें। अभुक्त मूल में, अभिजित नक्षत्र में, संध्या के काल में, संवत 1554 में श्री यमुना जी के तट पर बसे हुए राजपुर ग्राम में सरयू पारीण पाराशर गोत्रीय विप्रकुल पंडित आत्माराम दुबे जी के घर उनकी भाग्यशालिनी सौभाग्यवती महान पतिव्रता सती साध्वी भक्ति परायणा श्री हुलसी माता के दक्षिण कोख से हम सबके चरित्र नायक गोस्वामी जी का आगमन। मानस जी की एक पंक्ति है, प्रायः लोग उसको मुहावरे के रूप में प्रयोग करते हैं, उपजही अनत अनत छवि लहें, उपजही अनत और अनत छवि लहें। गोस्वामी जी का जहां प्रादुर्भाव हुआ वहां दूसरों की तो क्या चले, उनके पूज्य पिता भी इस अनुपम रत्न को परख नहीं सके। उन्होंने कुल तारक को कुल घातक समझ लिया और वे उस रत्न का आदर नहीं कर सके। गांव के किसी व्यक्ति के हृदय में यह भावना जागृत नहीं हुई इस बालक का संरक्षण है, और 5 वर्ष की आयु तक हरिपुर में चुनिया ने इनका भरण पोषण किया, और इसके बाद जब चुनिया भी सिधार गई और पंडित जी के पास चुनिया के पति ने जब सूचना दिया तो पंडित जी ने बालक को लेने से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया, और उसका परिणाम यह हुआ कि एक महात्मा के शाप से द्विवेदी खानदान का भगवत धाम प्रयाण हो गया। दूसरे स्थल की है पर एक भाव श्री सारार्थ दर्शनी टीकाकार पंडित श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का बहुत अच्छा लगा। भागवत के टीकाकार हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, तो उन्होंने एक जगह लिखा है जहां यदुवंश के क्षय का समाचार है, उन्होंने एक जगह भाव दिया, बोले भगवान ने मौशल मार्ग से उनको मुक्त कर दिया। यदुवंशियों के संहार को उन्होंने क्या कहा, भगवान ने मौसल मार्ग से, मूसल उत्पन्न हुआ था तो मौसल मार्ग से उन सबको मुक्त कर दिया। ये तो ठाकुर जी हैं, वे मौसल मार्ग से मुक्त करें कि शाप के ब्याज से मुक्त करें, मुक्तिदाता तो श्री हरि हैं और वे मंगल भवन अमंगल हारी हैं, इसलिए उनके समस्त विधान मंगलमय हैं। परीक्षित को शाप लगा लेकिन उससे परीक्षित जी का क्या अनिष्ट हुआ, वस्तुतः शाप के ब्याज से श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुआ। वस्तुतः कल हमने भाव निवेदित किया था कि गोस्वामी जी के जैसा महापुरुष जिस कुल में प्रकट हो वह कुल उसके संचित क्रियमाण प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो गए, शुभाशुभ दोनों ही मिट गए, इसलिए वो मुक्त हो गए। अब कोई कर्म ही नहीं रह गया तो रहेगा कैसे धरती पर, वो सब मुक्त हो गए, इसलिए पूरा का पूरा खानदान वो साकेतवासी हो गया, सबको साकेत की दिव्य साकेत की प्राप्ति हो गई। और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाल्यकाल की जो एक अत्यधिक हृदय विदारक जो उनके बाल चरित्र का अंश है, जहां वे अत्यंत भूख प्यास से व्याकुल होकर अनाथ अनाश्रित बालक की तरह हरिपुर में भटकते हैं, लेकिन अब उन्हें कोई आश्रय देने वाला नहीं है, क्योंकि इस बात की प्रसिद्धि हो चुकी है कि इनके पिता ने भी इनको स्वीकार नहीं किया। और तो और शाप की बात तो लोगों में प्रसिद्ध भई नहीं, ये और हो गई कि देखो कैसा अशुभ बालक है, 6 महीने के भीतर कितना विशाल द्विवेदी परिवार, राजगुरु परिवार, और वह भी कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। देखो कितना भाग्यहीन बना। इसलिए इस बालक को प्रश्रय देना, इसको आश्रय देना भी विपत्ति कारक है। कहीं ऐसा न हो अब तक इस बालक को जिसने आश्रय दिया है वही संसार से विदा हो गया। जीवशु जो प्राणी है उनके चित्त में प्रेम नहीं होता, वे तो किसी भी कीमत पर बचना चाहते हैं और बच सकते नहीं, क्योंकि मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सह जायते अद्य वाब्द शतांते वा मृत्युर वही प्राणिनान ध्रुवा। तो चाहे आज मृत्यु हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु तो होगी, पर दुर्भाग्य से अज्ञानी जीव वह अपने आप को मृत्यु से बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप लोग कहेंगे कि चुनिया की क्या गति भाई, चुनिया की ही नहीं, हमारा तो अपना ऐसा विश्वास है कि जिस परिवार में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पोषण प्राप्त किया होगा उन जीवों का भले ही कोई सुकृत न हो, कोई संस्कार न हो, कोई भजन साधना उपासना न हो, किंतु ऐसे महान प्रेमी अनुरागी भक्त का जिन्हें जहां बाल्यकाल बीता हो, जिन्हें उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, वे भी भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहे होंगे, वे सब भी इस दुखद संसार के चक्र से मुक्त हो गए। कोई जाते नहीं महाराज जी, मनुष्य की क्या चले, भगवान का अनुरागी प्रेमी भक्त कीट पतिंग पशु पक्षी पर अपनी नेहवरी नजर डाल दे वह मुक्त हो जाता है, वृक्षादि भी अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त हैं, पुराण वचन प्राप्त हैं इस प्रकार। आप लोग कहेंगे आप जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक प्राकृत बालक के समान लीला कर रहे हैं, फिर अभी तो उनमें श्री राम प्रेम प्रकट हुआ नहीं, अनुराग प्रकट हुआ नहीं, फिर उस काल में उनकी सेवा करने वाले वालों का संस्कृति चक्र कैसे छूट सकता है। हम एक प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, आपने अपने बगीचे में बढ़िया आम का पौधा लगाया, अब आज पौधा लगाया है तो आज ही तो फल नहीं देगा, आज फल देगा, पर वह आम का पौधा लग गया तो उसके लगते ही यह निश्चित हो गया कि यह कभी न कभी पुष्पित होगा, फलित होगा, और इसके अमृतमय रसाल फलों का रसास्वादन का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। ये बात पक्की हो जाती कि नहीं, भले ही आम नहीं दिखाई पड़ रहा है, बौर नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आम का पौधा है तो इसमें आम के ही फल लगेंगे, बबूल की फली नहीं लगेगी, ये बात पक्की हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि ऋतु आने पर आम के पेड़ में फल लगते हैं और जब वह ऋतु चली जाती है तो वह वृक्ष फल शून्य हो जाता है, तो उस फल शून्य वृक्ष को देखकर भी लोग फलहीन कहकर उसकी निंदा नहीं करते, अपितु उस वृक्ष को भी फलवान मानते हैं। ऐसे ही संतों के जीवन में, साधकों के जीवन में भगवत प्रेम की, भगवत विरह की ऋतु आती है, और जब वह ऋतु आती है तो प्रेम के फल उसमें लगते हैं, और जब लगते हैं तो उस काल में जो उस संत रूपी बिटप का सेवन करते हैं उनको उनके प्रेम रूपी फलों के रसास्वादन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जब वह ऋतु चली जाती है, प्रेम का कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी जिन्होंने उस वृक्ष के रसाल फलों का रसास्वादन किया है, वे फिर भी उस वृक्ष के नीचे जाकर के यह फलवान है यह विश्वास रखते हैं, और फिर ऋतु आएगी तो फिर फल लगेंगे, फिर हमें रसास्वादन का अवसर मिलेगा, ऐसी आशा भी करते हैं। एक बार किसी देहधारी के भीतर भगवत प्रेम प्रकट हो गया, बस उतने मात्र से वह कृतार्थ हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। बड़े बड़े प्रेमी अनुरागी महात्मा, उनके प्रेम की अनुराग की अवस्था सदा सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, रहती है क्या? आप लोग कहेंगे क्यों नहीं रहती? सच्ची बात तो यह है कि जिस ऊंचे धरातल के भगवत प्रेम का आस्वादन वे कर चुके हैं, जिस तीव्र विरह के ताप का वे अनुभव कर चुके हैं, वह ताप वह विरह यदि अधिक काल तक रहे तो वह शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर भस्मसात हो जाएगा। पर श्री ठाकुर जी विचार करते हैं, यह प्रेमी हमारे प्रेम को प्राप्त करके कृतार्थ हो चुका है, कृतकृत्य हो चुका है, जीवन मुक्त हो चुका है, अब यह दीर्घ काल तक इस शरीर से धरती पर रहे, क्यों? बोले इसके शरीर को छूकर जहां तक हवा जाएगी वहां तक के जीवों को कृतार्थ कर देगी। ये अपनी वाणी से कुछ न कहेगा, ये जिस क्षेत्र में रहेगा, जिस देश में रहेगा, वह देश धन्य हो जाएगा। तीर्थी कुर्वंत तीर्थानी स्वांतस्थेन गदाव्रता, वे अतीर्थ को भी तीर्थ बना देना। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गीता वाटिका गोरखपुर ना तो चार धामों में आता है और ना ही सप्तपुरियों में आता है, नहीं आता, ना सप्तपुरी में आवे और ना चार धाम में आवे। लेकिन इस स्थल पर बैठ करके प्रेम मूर्ति नित्य वंदनीय स्मरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने यहां निवास किया,